તારીખ 30/12/1994 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 62.
સરળતા છે, મધ્યસ્થતા ઓર વિશાલતા કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ એ વિશે ચલા હમ આગે કી બાત હૈ. चार गति में तिर्यंज गति में जीवों की सबसे ज्यादा संख्या है. सबसे कम संख्या मनुष्य की होती है चार गति में. इससे ज्यादा नारक की होती है, इससे ज्यादा देवों की होती है चारों गति में. और सबसे अधिक संख्या तिरिंज गति में होती है. तिरिंज गति की मात्रा तो बहुत है, अनंतानंद है. चार गति में तिरिंज गति के भीतर जीवों की सबसे अधिक संख्या होती है. उसका कारण जीव का वक्र परिणाम है, असरल परिणाम है, आड़ा परिणाम है. और इन्हीं परिणामों का यह फल है. मतलब क्या हुआ कि तीनों गति वाले जीव में असरलता के परिणाम ज्यादा होते हैं, सरलता के परिणाम बहुत कम होते हैं. जब मनुष्य गति में जीवों की संख्या सबसे कम होती है, तीनों काल की इस प्रकार की संख्या जो चारों गति में है, इससे ऐसा सूचित होता है कि संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों में सरल परिणाम करने वाले जीव बहुत कम हैं, असरल परिणाम करने वाले जीव अधिक होते हैं, बहुत होते हैं. सरल परिणाम से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है और मनुष्य देह का मूल्य बहुत है, मनुष्य गति का मूल्य बहुत है. क्योंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष तो मनुष्य गति के अलावा किसी का होता ही नहीं, और मोक्ष मार्ग का भी अधिक से अधिक अवसर मनुष्य गति में मिलता है और तीनों गति में इतना अवसर नहीं होता कि जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें. मनुष्य गति के कारण रूप परिणाम जो है, उसमें दो मुद्दे हैं. शास्त्र में उसका तो उल्लेख है, तत्वार सूत्र में भी वो बात है, और अमृत चंद्राचार्य का जो तत्वार सार है उसमें भी वो बात है. अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के परिणाम और सरल परिणाम, ये दो प्रकार के जो परिणाम है वो मनुष्य गति के कारण रूप होते हैं. मनुष्य चार गति के परिणाम जो होते हैं, इसमें तीव्र क्रोध के और तीव्र कषाय के परिणाम से जैसे नरक गति मिलती है, तीव्र माया के परिणाम से तिरिंच गति मिलती है, तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह और सरलता के कारण से मनुष्य गति का बंधन बंद होता है. इसलिए सरल परिणाम से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है. इस मनुष्यत्व की दुर्लभता देखकर भी सरलता उपासनीय है. सरलता की उपासना करनी चाहिए। अगर हमें दूसरी तीन गति में नहीं जाना हो तो सरलता की उपासना करनी चाहिए तो मनुष्य को मिल सकता है। जिसको परिपूर्ण निर्दोष और पवित्र दशा प्राप्त करने की अभिलाषा हो, ऐसे जीव को सबसे प्रथम स्वच्छंद रूपी महादोष की हानि करनी चाहिए। स्वच्छंद से बहुत अनेक प्रकार के दोष पनपते हैं, ये स्वच्छंद महादोष है। इसलिए जिसको निर्दोषता चाहिए उनको सबसे प्रथम स्वच्छंद रूपी महादोष की हानि करनी चाहिए। और स्वच्छंद रूपी महादोष की हानि करने का दो प्रकार है हानि करने के लिए। एक तो निज परिणामों का, निज दोष का अवलोकन करना। निज परिणाम में अपना दोष का अवलोकन करने से स्वच्छंद की हानि होती है। वो कार्य कठिन है, आसानी से नहीं हो पाता। जबकि अगर कोई सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उनके चरण सानिध्य से स्वच्छंद रूपी महादोष बहुत अल्प प्रयास से चला जाता है। आत्मसिद्धि में भी वो गाथा है, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय। निज छंद कहो या स्वच्छंद कहो या अपने आप कहो, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु चरण मा अल्प प्रयास जाए। तो ये स्वच्छंद रूपी जो महादोष है, या तो सत्पुरुष का चरण सानिध्य मिल जाए तो बहुत आसानी से अल्प प्रयास में चला जाएगा। क्यों? कि इसकी जो महानता है, ये महानता के आगे स्वच्छंद होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। महानता जो दिखती है, प्रत्यक्ष दिखती है कि ऐसे महान है, तो अपना जो स्वच्छंद है वो उठता ही नहीं है। स्वच्छंद होने के पहले ही वो खत्म हो जाता है, आता ही नहीं है। ये बहुत सरल से सरल उपाय है। और दूसरा उपाय है अपना दोष का अवलोकन करना। अवलोकन करना, दोष का अवलोकन करना माने क्या? कि चलते हुए परिणामों में दोष को देखना। जो दोष के परिणाम व्यतीत हो गए हो उनको स्मरण में लेना, वो दोष का विचार है, अवलोकन नहीं है। अपने दोष का विचार करना एक बात है और अपने दोष का अवलोकन करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो जो दोष हो गए उनका विचार करने से जो हुआ वो नहीं हुआ ऐसा नहीं बनेगा। हो गया सो हो गया, वो नहीं हुआ ऐसा कैसे बनेगा? डन इज डन, कैन नॉट बी अंडन। वो अंडन कैसे हो सकता है? वो तो हो गया, हो चुका, वो तो भूतकाल दृष्टा तो हो गया। तो उसका विचार करने से दोष मिटने का उपाय हमें नहीं मिलता। लेकिन चलते हुए दोष को अगर देखने में आए, आत्म जागृति पूर्वक ये देखने में आता है, जिसको आत्म जागृति नहीं है उनको ये दोष देखने में नहीं आता। देखो वही युगानुयोग से हमारे पीरियोडिकल का नाम भी आत्म जागृति सैंक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ ना आत्म जागृति। ऐसे 5-6 नाम देने पड़ते थे, पहले तो 5-6 दिए, इसमें से कोई नहीं पास हुए, फिर 6 और भेजे तो इसमें आत्म जागृति पास करके आया है। मुमुक्षु की भूमिका में ये जो जागृति है वही मुमुक्षुता है, यानी जितनी जागृति है उतनी मुमुक्षुता है, जागृति नहीं है तो मुमुक्षुता भी नहीं है। इसलिए जो मुमुक्षु अपने हित और अहित के विषय में जागृत है वो अपने चलते हुए परिणामों में अपने दोष को देखेगा, अवलोकन करेगा, और चलते हुए परिणामों में दोष का अवलोकन होते ही इस दोष में जो रस है वो एकदम ठंडा हो जाएगा, रस की हानि हो जाएगी, रस कम हो जाएगा, यानी परिणाम के दोष की शक्ति टूट जाएगी, कषाय की शक्ति टूट जाएगी। कषाय सीधा कभी किसी का अभाव नहीं होता, प्रकृति भी सीधे अभाव रूप नहीं होती, पहले इसकी शक्ति टूटती है फिर वो अभाव को प्राप्त होता है, ऐसा क्रम है। इसलिए जिसको दोष को निकालना हो मिटाना हो उसको अपने परिणाम में दोष का अवलोकन करना चाहिए। और वो अवलोकन कैसे करना चाहिए, निष्पक्ष अवलोकन करना चाहिए, अपक्षपात रूप से अपना दोष देखना। पत्रांक 254 में कृपालु देव वो बात लिखते हैं कि अपक्षपात रूप से अपना दोष देखने से स्वच्छंद हानि को प्राप्त होता है, स्वच्छंद रूपी महादोष की हानि वहां होने लगती है। जितना अवलोकन चले उतना फायदा है। ऐसा निष्पक्ष अवलोकन कौन कर सकता है कि जो सरल परिणामी जीव है वही कर सकता है। जो जीव सरल परिणामी नहीं है उसको कोई वो अपना दोष तो नहीं देख सकेगा, लेकिन कोई अगर उसको दिखाएगा कि तुम्हारे में ये दोष है वो अच्छा नहीं है तो उसका पक्षपात करेगा। वो ऐसा नहीं है, हमारा दोष नहीं है वो तो ऐसे कोई परिस्थिति खड़ी होगी इसलिए ऐसे परिणाम हुआ था, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होते तो हम ऐसा दोष नहीं करते। तो अपना दोष के लिए आरोप दूसरे पर लगाएगा, ये दोष का पक्षपात है, उसको दोष मिटाना नहीं है, उसका उसको दो अपने दोष का संरक्षण करना है, और रक्षित करने से और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, ये बात हो जाएगी। हाँ, वो भी असरलता है, वो भी अपने दोष का पक्षपात है। कोई हमको हमारे दोष दिखाए उसका तो हमें उपकार मानना चाहिए, वो हमारे उपकारी है, उस उपकारी के प्रति उपकार व्यक्त करने के बजाय हम ये कहें कि तुम तुम्हारा दोष देखो ना, हमारा दोष क्यों दिखाते हो, तो इसका मतलब कि हमको हमारा दोष दिखाया वो अच्छा नहीं लगा हमको, वो हमारी असरलता है। तो असरलता से तो नुकसान होगा होगा और होगा ही। ऐसा है कि जो सम्यक दृष्टिपना है ना, ये गुण की दृष्टि को, स्वभाव की दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं? स्वभाव दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। पर स्वभाव में तो गुण भरे हैं। स्वभाव क्या चीज है? आत्म स्वभाव गुण भंडार है। तो जिसको स्वभाव की दृष्टि है उसको गुण दृष्टि है, और जिसको गुण दृष्टि नहीं है उनको दोष दृष्टि है। वो अपना दोष का तो बचाव करेगा, लेकिन जिस पर ममत्व होगा उसका दोष का भी वो बचाव करेगा। ये हमारे समाज में एक ग्रुप क्यों हो जाते हैं? ये हमारा ग्रुप है, हमारे वाले हैं, ऐसा क्यों हो जाता है कि हम हमारे वाले का दोष नहीं गिनेंगे, सामने वाले का दोष गिनेंगे? इसका दोष कोई बताएगा तो हम उसको गिनेंगे नहीं, इसका बचाव करेंगे कि भाई वो तो ऐसा कारण है, उसमें तो ऐसा कारण है, ऐसा कारण है। तो ये बात ठीक नहीं है। जहां अपना दोष का भी बचाव नहीं करना है, वहां दूसरे का दोष का बचाव करें। ये तो कितनी दोष दृष्टि तीव्र होगी तब ये प्रवृत्ति होगी कि बहुत दोष दृष्टि तीव्र हो जाती है, तब वो दूसरे का दोष का भी बचाव करता है। तो अपने का तो करेगा ही करेगा। ऐसे दोष दृष्टि के परिणाम वाले जीव गुण दृष्टि से बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। उसको सम्यक दर्शन होना बहुत कठिन बात है, बहुत दूर की बात है। ऐसे सरलता के प्रकरण में से बातें तो बहुत निकलती हैं इस प्रकार से। ऐसा निष्पक्ष अवलोकन सरल परिणामी जीव ही कर सकता है। स्वदोष मिटाने का यह एक रामबाण इलाज है। क्या? दोष मिटाने का एक अचूक उपाय है। चलते हुए परिणाम में दोष देखें और वो दोष नहीं मिटे, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज एक नियम है। राम का बाण कभी खाली नहीं जाता था। वो इतने धनुर्विद्या सीखे थे कि उनका बाण कभी खाली नहीं जाता। उसने बाण छोड़ा कि अगले का प्राण गया समझो, वो कभी खाली नहीं जाता। वैसे अपना दोष देखने से ये दोष को जाना ही पड़ेगा, ये अनुभव सिद्ध बात है। सभी ज्ञानियों की ये अनुभव सिद्ध बात है। परंतु ऐसा परिणमन सरलता बिना साध्य नहीं है। बिना सरलता ये बात होने वाली नहीं है। सरलता होगी तो निज दोष का अवलोकन होगा, सरलता बिना वो बात बनने वाली नहीं है। और सुगमता से स्वच्छंद रूपे अंधत्व से दूर होना हो। स्वच्छंद के साथ अंधत्व आता है। वो प्रयोग कृपालु देव ने 194 नंबर के पत्र में किया है कि स्वच्छंद रूपी अंधत्व होने से जीव को अपना आत्म कल्याण की दिशा सूझती नहीं है। जैसे अंधेरे में हमको गाढ़ अंधारपट होता है तो हमको कोई रास्ता नहीं सूझता है कि हमको किधर जाना चाहिए। वैसे स्वच्छंद रूपी अंधत्व आता है तो जीव को आत्म कल्याण, आत्मा का हित अहित के विषय में कुछ सूझ नहीं आती है। इससे सुगमता से दूर होना हो, सरलता से ऐसा दोष को मिटाना हो, बहुत भयंकर दोष है वो। वो जीव को मति सरल होने से, इसकी मति सरल होने से वो ज्ञानी की आज्ञा से चलने के योग्यता, चलने की योग्यता को प्राप्त करता है। जिस जीव को ज्ञानी की आज्ञा से चलना है उसकी मति सरल है, और जिसकी मति सरल है वो ज्ञानी की आज्ञा पर चलेगा। और इसका बहुत बड़ा दृष्टांत है सुभाष भाई। सुभाष भाई कोई खास शास्त्र नहीं पढ़े थे, आदमों का अध्ययन उनका नहीं था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी योग्यता तो थी, तो वो थी कि ज्ञानी के मार्ग पर चलने का इसका अद्भुत निश्चय था। कैसा निश्चय था? अद्भुत निश्चय था। और ओ गुरु कृपालु देव ने देख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि सुभाष भाई में असामान्य सरलता थी। कितनी सरलता थी? असामान्य सरलता थी। सामान्य सरलता नहीं थी, असामान्य सरलता थी, यानी अद्भुत सरलता थी, ऐसा कहें। उसका उल्लेख किया है कृपालु देव ने। जब वो उनका देहांत हो गया और इनके परिवार पर जब पहली चिट्ठी लिखी, वो पत्रांक है 783। 783 में वो लिखते हैं, उसको नमस्कार करके लिखते हैं। क्या? गुरु अपने शिष्य को नमस्कार करते हैं, ठीक। शिष्य तो गुरु को नमस्कार करे, वो तो एक बहुत सामान्य प्रणाली का है, लेकिन शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को नमस्कार करे, ये सामान्य बात नहीं है, वो असामान्य बात है। है कि नहीं?
इसमें रहस्य क्या?
गुण के प्रति नमन करना, वो रहस्य है। उसमें गुण दिखे तो व्यक्ति की बात गौण होगी कि मेरा गुरु है या मेरा शिष्य है या कौन है। हमने तो गुण देखा, हमारा नमस्कार हो गया, बस। ये गुण के प्रति नमस्कार है। जिसको गुण के प्रति बहुमान है, जो गुण के प्रति ढलन रखता है, नमन रखता है, वो गुणवान के प्रति, गुणे के प्रति नमस्कार करेगा, करेगा और करेगा ही। ऐसे दो दृष्टांत है, हमारे गुरुदेव का भी वो ही दृष्टांत है। सोगानी जी इनके शिष्य थे और गुरुदेव का बहुत भक्ति बहुमान किया सोगानी जी ने अपने पत्रों में, तीर्थंकर से भी अधिक, अनंत तीर्थंकर से भी अधिक। वही गुरु ने ऐसा कहा कि वे अभी देवलोक में गए हैं, वहां से आयुष पूर्ण करके मनुष्य होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दो ही गति होती है, एक देव और एक मनुष्य, तीसरी नहीं होती। और जब ये मनुष्य होंगे, अपने साधना में वो झपट करेंगे। झपट मैंने वो काठियावाड़ी शब्द है सौराष्ट्र का, तीव्र गति करेंगे, जैसे रॉकेट जाता है ऐसे। और उसी भाव में वो निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। हमारे तो चार भाव है। क्या बोले? हमारे तो अभी चार भाव है। आखिरी भाव तीर्थंकर का है। तीर्थंकर जो दीक्षा जब लेते हैं तो वो अरिहंत को नमस्कार नहीं करते, जो खुद जगत गुरु है, इसलिए वो सिद्धों को नमस्कार करते हैं। तो जब दीक्षा लेते हैं तो उसके मुख से उच्चारण होता है, नमः सिद्धेभ्यः, जितने भी सिद्ध हैं उनको मेरा नमस्कार है। तो उस वक्त मेरा नमस्कार उनकी आत्मा को भी पहुंचेगा। ऐसा कहते हुए उनको ये नहीं लगा कि मेरे शिष्य को मैं नमस्कार करूं, ऐसी बात क्यों बोलता हूं, ऐसा नहीं लगा। जब बाप से बेटा सवाया होता है, गुरु से शिष्य सवाया होता है, तो ये गुरु का गौरव होता है, उसमें कोई दूसरी बात होती नहीं है। इसमें ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, उसको तो गौरव होता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है। तो श्री सौभाग को नमस्कार, ऐसा लिखा है पत्र के हेडिंग में। मित्र, पत्र के हेडिंग में सर्वज्ञाय नमः, वितराग देव को नमस्कार, ऐसा सत्पुरुष को नमस्कार, ऐसा लिखते थे। लेकिन नाम लेकर लिखा कि श्री सौभाग को नमस्कार, और पत्र इनके परिवार पर लिखते हैं, पुत्र वगैरह को लिखते हैं कि श्री सौभाग की मुमुक्षुता और ज्ञानी के मार्ग पर चलने का इनका अद्भुत निश्चय हमको बार बार स्मरण में आता रहता है। अभी वो नहीं है तो इसका स्मरण आता है, प्रत्यक्ष तो नहीं रहे, तो इनका स्मरण किस रूप में आता है। और श्री सौभाग भाई तीर गए, उनको भी सम्यक दर्शन हो गया, किस कारण से? एक यही गुण के कारण से। ज्ञानी के मार्ग पर चलना है, उनके बताए हुए क्रम का हमें अनुसरण करना है, हमारी मनमानी और स्वच्छंद हमें कुछ करना नहीं है। बस वो बच गया, वो जीव बच जाएगा। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को जो जितनी सूचनाएं उतनी पालन करनी पड़ती हैं, चलता है उसमें कुछ नहीं चलेगा। वो कहे कि लेटे रहो, लेटा रहना पड़ेगा, मत बोलो, नहीं बोलना पड़ेगा। वो ICCU में ले जाते हैं कि नहीं, इंसेंटिव केयर यूनिट, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किसी का मुंह देखना नहीं, कुछ नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई किसी एक को देखने से इमोशनल पोजीशन में आ जाए, हार्ट फेल हो जाए। फीलिंग के साथ हार्ट का तो सीधा संबंध है, तो इसलिए वहां एकदम स्ट्रिक्ट मर्यादा में रहना पड़ता है, स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो। तो जैसे ज्ञानी की आज्ञा पे हमें चलना है तो तीर जाएंगे, स्वच्छंद करना है मर जाएंगे, बस दो बात है। इसलिए जो जिसकी मति सरल होती है वो ज्ञानी के आज्ञा पर चलने की योग्यता को प्राप्त करता है। ज्ञान दशा प्राप्त करने का यह अद्भुत उपाय है, बहुत सुगम और अद्भुत उपाय है। लंबे माथापतीसी में जाना ही नहीं पड़ेगा उसको, सीधा सीधा सरल उसका काम होता जाएगा, सरलता उतनी आनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा उठाने के लिए जो तत्परता होती है, तैयारी होती है, वो सरल परिणामी जीव को होती है। इसलिए उसे ज्ञानी पुरुष का बोध और धारण करने की क्षमता की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष का बोध असर किसको करता है? जो इसकी आज्ञा पे चलने के लिए सरल परिणामी होता है उनको इसका बोध है, वो परिणमन कर जाएगा। वरना सुनेगा परिणमन होगा नहीं, सुनेगा सही परिणमन नहीं होगा। अनेक शास्त्र का अध्ययन और बहुत बाह्य क्रिया से जो लाभ नहीं होता है, इससे ज्यादा लाभ सरल परिणामी मुमुक्षु को ज्ञानी के मार्ग में चलने का दृढ़ निश्चय से होता है। इसलिए उसको सुगम मार्ग कहा, सरल मार्ग कहा। कृपालु देव ने ज्ञानी की भक्ति का बात किया है, उपदेश दिया है, उसी कारण से दिया है। ये बहुत सुगम उपाय है। अनेक शास्त्र पढ़ने से जो
ये सर्वप्रथम अन्य ग्रह के संयोग में आया भी क्यों और कैसे? देखिए, जो चौथ ब्रह्मांड रूप लोक है उसमें छह ग्रह का संयोग अनादिअनंत है। छह ग्रह का संयोग अनादिअनंत है। चौथ ब्रह्मांड का कोई भी क्षेत्र एक अंश में भी या एक परमाणु रहे उतनी जगह में भी पांच ग्रह नहीं है, छह ग्रह है। सारा लोक जीव से खिंचो खींच भरा गया है, परमाणु से भी खिंचो खींच भरा गया है। कारण लोक के हर प्रदेश में है, धर्मास्तिकायता क्षेत्र ही पूरा लोक प्रमाण है और आकाश करने का लोक प्रमाण है। इसलिए अन्य ग्रह का संयोग में कोई आया नहीं है, ये तो है ही अनादेश संयोग, तो नया संयोग तो नहीं हुआ है, पर इसका विरोध भी होने वाला नहीं है, ये तो अनादेश है ही। इसलिए छह द्रव्य का एक क्षेत्र होना, लोक में होना, वो पारिणामिक भाव से है और इससे न कोई लाभ है न कोई नुकसान भी है। छह द्रव्य लोक में एक जगह पर रहता है तो इससे कोई लाभ न लाभ है न कोई नुकसान है, इसलिए उसकी चिंता करना प्रयोजनभूत नहीं है। ऐसा तो उस समय का कोई प्रयोजन हमें लेना देना नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थित में और प्रमाण के विषय में क्या अंतर है? ठीक है, प्रश्न कहो, पर इतना मुमुक्षु के लिए बहुत प्रयोजन भूत नहीं है। शास्त्र समझने के लिए थोड़ा इसका प्रयोजन हो सकता है। शुद्ध द्रव्यार्थित में मैंने जो द्रव्य का शुद्ध अंश है, शुद्ध स्वभाव है, उसको देखने का जिस ज्ञान का प्रयोजन है उसको शुद्ध द्रव्यार्थित में ही कहते हैं। यानी अपना शुद्धात्म स्वरूप को जानने का जिसका प्रयोजन है उसको शुद्ध द्रव्यार्थित में कहते हैं। द्रव्यार्थित में जनरल कोई द्रव की मुख्यता से कहने वाले या देखने वाले को द्रव्यार्थित में कहते हैं। और प्रमाण है उसमें नल नहीं है, उसमें नव प्रमाण का या सामान्य विशेष का युक्त ज्ञान होता है, उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। नव है वो प्रमाण ज्ञान का अंश है और प्रमाण ज्ञान है वो अवयवी है, नव इसका अवयव है, ऐसा समझना। द्रव्यार्थिक नियम में द्रव की प्रधानता से देखना, शुद्ध सुख का सवाल नहीं है। शुद्ध सुख का सवाल तो शुद्ध द्रव्यार्थित भी होता है, शुद्ध द्रव्यार्थित भी होता है, द्रव्यार्थित भी होता है, तीनों प्रकार के नहीं होते हैं। द्रव्यार्थित के लिए दस भेद आत्मीमांसा में लिया है, अनेक प्रकार के, उनको बहुत लंबी चौड़ी बात है, अलग अलग दृष्टिकोण है उसमें। शंका आशंका प्रश्न और जिज्ञासा में क्या अंतर है? शंका तो ये है कि अगले की बात में प्रामाणिकता नहीं देख करके प्रश्न करना वो शंका है, अगले को अप्रमाणिक समझ करके जो प्रश्न करना उसका नाम शंका है। और आशंका में जिसको प्रश्न पूछा जाता है, शंका जिसके सामने की जाती है, उसको प्रमाणित रख करके हमारे गुरु है वो अच्छा जानता है, हमारे से ज्यादा जानता है, हमको समझ में नहीं आता है इसलिए हम पूछ रहे हैं, तो उसको आशंका बोलते हैं। प्रश्न तो प्रश्न होता है, वो जिज्ञासा जो है वो आशंका रूप में होती है, उसको जिज्ञासा कहते हैं। समझने का भाव जिसमें होते है उसको जिज्ञासा कहते हैं, और अनजाने में और जानने के लिए जिसको आतुरता हो उसमें प्रश्न निकलता है। વાંચવામાં આવ્યું હતું ભાવ ભાષણ વગરની બધું કલ્પના છે, તો ભાવ ભાષણ કેટલે લાગણું કે બીજો અર્થ થાય છે વિસ્તારથી સમજાવશો? ભાવ ભાષણને લગ્ન હોતા હૈ તો ભાવ ભાષણ કા ભાવ ભાષણ ફિલિંગ સ્ટેજ મેં આતા હૈ એટલે લગ્ન લગતા હૈ જૈસા સુબહ વાત ચલી થી कि हम सिद्ध हमारा स्वरूप कैसा है, साक्षात सिद्ध पद स्वरूप है, लेकिन वो लगता है तो भाव भाषण आया, नहीं लगता है तो वो कल्पना है, हमारे विषय में हमारी कल्पना हो जाती है। तो कल्पना नहीं करनी चाहिए, कल्पना आधारित यह मार्ग नहीं है, हमारा ये वितराग मार्ग को ठोस वस्तु स्वरूप के आधार पर चलता है, हकीकत पे चलता है, वास्तविकता पे चलता है, कल्पना पे मार्ग चलता नहीं है। इसलिए कहीं भी कल्पना नहीं करनी है, भाव भाषण में आना, और भाव भाषण में आने के लिए जो बात हमारी समझ में आई है उसको प्रयोग जिसका प्रयोग करने का पुरुषार्थ करने से और बार बार पुरुषार्थ करने से वो भाव भाषण होता है। जैसे आटा में पानी डालते हैं तो रोटी बनाने के पहले उसका जो पिंड बनाने में आता है तो उसको बार बार ऐसा करना पड़ता है तब पिंड बनता है, ऐसे पानी डालने से पिंड नहीं बन जाता। पिंड बनाने में लेट को जो है, आटा को जो है, उसको अच्छी तरह मसलना पड़ता है। अपने गुजरात में हम कुछ लोट में केला हुआ पड़ा, लोट में केला हुआ पड़ा है, इस प्रकार से जो भाव भाषण है ज्ञान ज्ञान में केवल नहीं छे, ज्ञान केवल आए छे तो भाव भाषण आए छे। एक दूसरा विचार करें, मार्ग में तो इसी प्रकार का मार्ग ही है, इसी प्रकार का है। जैसे हमारे मोक्ष मार्ग का जो मोक्ष मार्ग में भी जो राज मार्ग है वो मुझे दिशा का है, वितराग मार्ग साक्षात वो मुझे दिशा है, और उनकी दिशा ऐसी हो गई है मुझे राज की कि क्षण क्षण में मेरी विकल्पता हो जाया करती है। इसके लिए विकल्प नहीं करना पड़ता कि हमको निर्विकल्प होना है, स्वतः क्षण क्षण में निर्विकल्पता आई जाती है, क्योंकि बस यही दशा केवल गई है, दशा में केवल है सहज और स्वतः होने लग जाए, ऐसा मार्ग है। यथार्थ उन्नति ना क्रम सौ प्रथम भय भ्रमण नो भय लागो जी पर भय भ्रमण ने प्रतीति ज नथी तो भय भ्रमण ने प्रतीति माटे केवी विचारणा चालवी जोईए। भय भ्रमण ने प्रतीति माटे प्रत्यक्ष देखा एवी वात छे। हमारे परिवार में देहांत होता है कि नहीं होता है? हाँ, नया बालक जन्म पाता है कि नहीं पाता है? और बाहर में तिलिंद की कितने प्रकार के तिलिंद दिखते हैं? हाँ, कितने प्रकार के तिलिंद दिखते हैं? हर एक प्रकार के छोटे मोटे जीव दिखते हैं। वो ये जीव है, ऐसा क्यों हुआ? हम मनुष्य हैं, ये गाय है, भैंसा है, बकरा है, वो है, चींटी है, मकोड़ा है, वो है, बत्ती के भी होते हैं, प्रकाश के, पानी के, अनेक प्रकार के कीटाणु, ये सब प्रसिद्ध है। कारण बिना कोई कार्य तो होता नहीं। कोई कारण बिना कार्य हो सकता है क्या? तो किस कारण से वे हुए? अगर इस कारण कार्य को हम नहीं समझेंगे तो हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसका विचार करें। गुरुदेव तो कहते थे कि सारा जगत सम्यक ज्ञान का निमित्त है। क्या? ये जो जगत है सारा, ये सम्यक ज्ञान का निमित्त है। जगत का ज्ञान करने से ज्ञान सम्यक हो जाता है। देखो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ऐसा अगर हम इसके लिए कोई इलाज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हमारी हालत अनिवार्य रूप से ऐसी होने वाली है। ऐसा समझ लेना चाहिए। हमको मरना पसंद है क्या? आप एक भी मनुष्य को ले आओ तो जो मरने के लिए पसंद भी करता है मरने के, किसी को मरण पसंद नहीं है। जब मरण पसंद नहीं है फिर भी मरण आने वाला है, वो बात निश्चित है क्या? नहीं है। अब एक आदमी देखा है किसी परिवार में कभी मरा ही नहीं है, उतनी आयु वाला हो या कोई सात बुढ़ापे में एक पीछे एक। आखिर बुढ़ापे में कोई तो जवानी में, कोई बचपन में जाता है, लेकिन बुढ़ापे में तो जाना ही पड़ता है। एक मरण भी हम नहीं चाहते, अनंत मरण, और इसकी चिंता भी हमें होती है कि नहीं होती है। तो मरण का कारण आता है तो मरण आ गया तब तो दर्शित हो जाएंगे, सुखसान भी नहीं रहेगी। लेकिन इसका कारण उपस्थित हो गया तो कितनी चिंता होगी। पर हमारे अज्ञान और मिथ्यात्व में अनंत जन्म मरण का कारण मौजूद है, इसकी चिंता हमें क्यों नहीं होती है? ये मूर्खता इतनी बड़ी है कि हम एक रुपये का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और हजारों का नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। एक रुपया अगर हम गुमाते हैं तो हमारा जीव चला जाता है, और हजारों चला जाता है तो हमको कोई पता ही नहीं पड़ता कि क्या हुआ। ये कोई समझदारी है क्या? आउट ऑफ कॉमन साइंस मोह वशात हमारा परिणाम चल रहा है कि हमको अनंत जन्म मरण के कारण मौजूद होने पर भी चिंता नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो ये क्रम में उन्नति के परिणाम के उन्नति के क्रम में प्रवेश होने वाला नहीं है। हम भले ही तत्वज्ञान का कितना भी अभ्यास करें, कितने भी शास्त्र पढ़े, कितना भी प्रवचन सुने या कितनी भक्ति पूजा उपास व्रत नियम करें, लेकिन परिभ्रमण की चिंता ही कभी नहीं हुई हो तो हमारा प्रवेश भी धर्म के क्षेत्र में यथार्थ रूप से तो नहीं हुआ है। इसलिए हमारा आत्मकल्याण होने के लिए यथार्थता की वहां प्राप्ति नहीं है, तो यथार्थता आएगी कहां से और आत्मकल्याण होगा कहां से, होने वाला नहीं है। यहां से चालू होना चाहिए, ये बात है सबों के लिए, एक के लिए ये बात है, दूसरे के लिए दूसरी बात है, वो नहीं है। और प्रश्न और नहीं है, स्वरूपाचरण चारित्र की क्या स्थिति है, क्या कभी छूट भी जाता है और बाद में चालू भी हो जाता है। स्वरूपाचरण चारित्र में चारित्र गुण का स्वरूप आश्रित परिगमन होना, चारित्र गुण की स्थिति है स्थिरता, परिणामों के स्वरूप में स्थिरता होना, उपयोग की स्थिरता होना स्वरूप में, उसको स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। स्वरूप में आचरण होना, चरना जमना रम जाना जम जाना, उसी को स्वरूप आचरण कहते हैं। और वो प्रथम सम्यक दर्शन के काल में होता है, इसके पहले कभी किसी को नहीं होता है। फिर जितना भी स्थान में ऊपर ऊपर जाता है वो उतना उसका स्थिरता बढ़ती जाती है, स्वरूप आचरण चारित्र उसका बढ़ता जाता है और बारहवें स्थान में यथाख्यात चारित्र में वो पूर्णता को प्राप्त करता है। और उसका दूसरा नाम बीतरागता है, यहां स्वरूप में लीनता होती है वहां बीतरागता की प्राप्ति होती है। जिस मात्रा में स्वरूप आचरण होता है उस मात्रा में राग का अभाव हो जाता है, उसको बीतरागता कहने में आती है। और वो छूट जाता है तो सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान छूट जाता है तो चारित्र भी छूट जाता है। और बाद में फिर से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है तब चालू होता है, ऐसे आता जाता है, ऐसा नहीं बनता है कि श्रद्धा ज्ञान रह जाए चारित्र आता जाता रहे, ऐसा नहीं होता। प्रसन्न ज्ञान चारित्र साथ में ही रहता है, आते भी साथ में और जाते जाते भी साथ में ही जाते हैं। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, यहां पूर्णता का लक्ष्य व साध्य का लक्ष्य है, उसको प्रकट करने के लिए किसका लक्ष्य करना होगा। संसार का लक्ष्य छोड़ना होगा और पूर्ण निर्दोषता का लक्ष्य करना होगा, तीसरे का इसमें किसका लक्ष्य करने का सवाल नहीं है। वहां लक्ष्य करना है ध्येय में लेना, साध्य के स्थान में ले लेना, उसको यहां लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य इसलिए कहा है कि ज्ञान में से छूटता नहीं, ज्ञान में स्मरण करना पड़े ऐसी बात नहीं होती, स्मरण विस्मरण से जो पर है और वो ज्ञान में सदा ही रहा करता है, उसी का नाम लक्ष्य कहते हैं यहां। और पूर्ण साध्यता तक का जिसको लक्ष्य रहता है, जैसे हम यहां से निकलेंगे हमारे निवास स्थान पर जाएंगे जहां हम निवास करते हैं, तो चलते चलते दूसरे विचार हमको स्मरण नहीं करना पड़ेगा कि यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है। दूसरे कुछ भी विचार करते करते हम वहां चले जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है कि हमें कहां जाना है। इस तरह से लक्ष्य बनता है। तो ऐसा लक्ष्य बनना, बनने से कोई दूसरे का लक्ष्य करना पड़ता है, ऐसी बात इसमें नहीं है। हमारा अनादि से संसार का लक्ष्य है वो छूट जाता है और पूर्णता का लक्ष्य बनता है। कृपालु देवे आत्माना छो पद शिष्यनी शंका अने गुरुना समाधान रूपे बताया छे, તેમાં શંકાનું સ્વરૂપ કેવું હશે? તો શંકાનું સ્વરૂપ જો પૂછને કા યા પ્રશ્ન કરને કા મન હુઆ, ઇસકા મતલબ કે ઉસ સ્થાન મે હમ અપને આપ કો નહીં ગિન રહે હૈ, વહાં હમકો એક મનુષ્ય કા સ્થાન હૈ। ઇસમે છ પદ કી શંકા હુઈ, શંકા મતલબ આશંકા હુઈ હૈ। तो शिष्य की जगह अपने आप को मिठा देना चाहिए, बथुरना चाहिए, यहाँ ऐसी शंका होगी या ऐसा प्रश्न होना जरूरी है। और उत्तर को या प्रतिपादन करने का जो विषय है, उस विषय को अधिक स्पष्टता से खोजने के लिए शंका समाधान को दिए बात का प्रतिपादन करने में आया है। अगर ऐसा प्रश्न होता है तो इसका उत्तर इस प्रकार का होता है। उस तरह से जो विषय वो कहना चाहते हैं उनकी अधिक स्पष्टता करने के लिए एक शैली बनाई है प्रश्नोत्तर की। प्रकृति जीव में चार गतिमा फेरवे छे तो शू करवी जोईए, केवी रीते उकेल लावो? प्रकृति का दुश्मन है ज्ञान। ज्ञान के सिवा कोई प्रकृति दिखती नहीं है, इसलिए सही ज्ञान करना पूरी प्रकृति को मिटाने का सच्चा उपाय है। या हमारा जो सन्मार्ग है, ये सन्मार्ग में आने वाले को सर्वप्रथम उसकी प्रकृति पर असर आती है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रकृति पर असर आई है तो मार्ग में आने लायक हुआ है। अगर प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जो कुछ भी करता है उसमें कोई डर नहीं है, सब गड़बड़ वाली बात है। प्रकृति में पहले फर्क पड़ना चाहिए। इस मार्ग का अच्छा लक्षण है, ये पात्रता का भी अच्छा लक्षण है कि पहले प्रकृति पे असर आ जाए, ऐसा होना चाहिए। ज्ञान में आए हुए राग के प्रति प्रतिबिंब को ज्ञान पर्याय से भिन्न किस तरह जाने? योगदान करने की प्रक्रिया क्या है? राग का प्रतिबिंब ज्ञान पर्याय का ही अंश है, भंग है, ऐसा होते हुए भेद ज्ञान कैसे करें? उस भेद ज्ञान का जो प्रयोग है उस समय साल की 17-18 गाथा में बहुत स्पष्ट आया है कि ये अनुभूति है सो ही मैं, मैंने अनुभूति में ज्ञान पर्याय में भोजन की जो क्रिया है सो ही मैं हूं, ऐसा भोजन के अंश में अपनत्व करना, मैंपना करना, जो भी अपना राज में हो रहा है वो तो कैसे छुट जाए कि अनुभूति में रोजन में जो अपना करने में आए तो इसलिए अपने ज्ञान के भोजन की प्रक्रिया रूप जो अनुभूति है उसमें मैं तना करके अपना अस्तित्व को ग्रहण करना ये भेद ज्ञान की क्रिया है, प्रक्रिया है, प्रायोगिक प्रक्रिया है। सिर्फ विचार करने की बात नहीं है, ये परिणाम में लाने की बात है। ऐसा करने से भेद ज्ञान होता है और यही मोक्ष की कला है, यही स्वसंवेदन की कला है। क्या यह ज्ञान पर्याय ही कारण शुद्ध पर्याय है? नहीं, वो ज्ञान की रूपाधिरूप पर्याय वो कारण शुद्ध पर्याय नहीं है। और कारण शुद्ध पर्याय में पर्याय शब्द उत्पाद वेरूप पर्याय का वाचक भी नहीं है। द्रव की वर्तमान स्थिति को सूचित करते हुए उसको पर्याय बोला है, तो द्रव त्रिकाली होते हुए भी इसके वर्तमान भंग को दर्शाने के लिए वो पर्याय शब्द लिया है। वास्तव में कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद वाली पर्याय है ही नहीं, ये बात है। तो विषय थोड़ा अधिक सूक्ष्म है। उसका एक जो किताब निकला है कारण शुद्ध पर्याय का, अहमदाबाद से अभी अभी प्रकाशित हुआ है, दो पांच मेरे पास आई थी, किसी को दिया है तो अहमदाबाद से या देवलाली ट्रस्ट में भी मिलेगा, मुंगाली में वहां भी प्राप्त स्थान है अपने। अभी भी आत्मकल्याण की बात समझ में आई और आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ करते हुए बीच में ही दिल वियोग हो गया तो वह चिंता रहती है क्या करें। दिल का वियोग होगा ना, आत्मा का थोड़ी ना होगा। एक ही चिंता आत्मकल्याण की जिसको चिंता है, पुरुषार्थ है, उसको दिल की चिंता रहती है। और दिल की चिंता वाले को आत्मकल्याण का पुरुषार्थ होता नहीं है। तो देह के जलवायु पूर्ण होगा तो हो ही जाएगा। देह से क्या मतलब है? क्या आत्मकल्याण देह के साधन से किया जाता है कि नहीं? आत्मकल्याण तो आत्मा के परिणाम है, देह के परिणाम नहीं है। देहात्म बुद्धि छोड़ने के लिए तो आत्मकल्याण है, पर आत्मकल्याण करने में देह की चिंता कहां से आई? वो तो आत्मबुद्धि का प्रकार है। जिसको देह प्रतिबंध नहीं है वही आत्मकल्याण कर सकता है, देह प्रतिबंध वाला का आत्मकल्याण होने वाला नहीं है।